अबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं विचार सागर मंथन करो, परंतु चार प्रश्न हैं इसके। एक, क्यों करें? दूसरा, कब करें? तीसरा, कहां करें? चौथा, किस विधि से करें? चार प्रश्न हैं। समय कम है हमारे पास, इसके लिए संक्षेप में हम देखेंगे क्यों करें। क्योंकि जब तक हम विचार सागर मंथन नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अपना नहीं बन जाता। वो दूसरे का रहता है, वो उधार रहता है। जब तक हम खुद उसको नहीं पढ़ते, जब तक हम खुद उसका मनन और चिंतन और अध्ययन नहीं करते, तब तक वो हमारा नहीं बनता है। शास्त्रों में तीन चीजों का वर्णन है, श्रवण, मनन, निनिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है उस पर सोचना, और फिर उसको कार्य में लाना, वो तीसरी स्टेज है। परंतु दो स्टेजेस के बीच वाली स्टेज है मनन अर्थात चिंतन, अर्थात उसके बारे में सोचना, उसका विस्तार करना। मुरली में कोई पॉइंट आ गई, उसको वही नहीं छोड़ दो। साकार महावाक्य है बाबा के, गए सेंटर पर, मुरली सुनी और वापस आ गए, ये है पुरानी चाल। वही पुरानी चाल नहीं चलनी है, अब कुछ तो नवीनता लानी है, ज्ञान में भी नवीनता और योग में भी नवीनता। ज्ञान में नवीनता लाने के लिए विचार सागर मंथन की आवश्यकता है, स्वयं के को ज्ञान स्पष्ट करने के लिए विचार सागर मंथन की आवश्यकता है, दूसरों को ज्ञान समझाने के लिए विचार सागर मंथन की आवश्यकता है। वो ज्ञान तब तक प्रैक्टिकल में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, चर्निंग नहीं करेंगे, कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। इसलिए मंथन आवश्यक है। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का मनन शक्तिशाली बनाता है आत्मा को। ज्ञान तो बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, जानते हैं बाप आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, सतयुग आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, बहुत सुना है। क्लास में गए और ये बातें हम सुनते हैं रोज, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें सेवा भी बहुत करनी है, तुम्हें दिव्य गुण भी बहुत धारण करने हैं, इधर से सुना और इधर से गया। क्योंकि एक ही बात बार बार अगर सुनाई जाए तो क्या हो जाता है, सुन सुन के दिमाग सुन हो जाता है कभी कभी। इसके लिए ज्ञान में नवीनता की बहुत आवश्यकता है। एक ही ज्ञान, एक ही समान, मैं भगवान का बच्चा हूं, 10 साल नहीं चल सकता है। रोज हम अगर सोचे भगवान पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है, एक दिन नशा रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 साल कैसे चलेगा। इस नशे को सूक्ष्म कर देना, नशे का सूक्ष्म रूप है स्वमान। जब नशा सूक्ष्म हो जाता है तब उसे स्वमान कहा जाता है। इसलिए आज से मुरली केवल सुननी नहीं है, परंतु क्या करना है, चिंतन। दूसरा प्रश्न था चिंतन कब करें, क्या उत्तर है, टाइम सुबह कब, अमृत वेले के बाद, और कब करें, सारे दिन कठिन कार्य है, और कब कब करें चिंतन, कब से, सोने से पहले, हाँ ये एक अच्छा समय है, सोने से पहले, और जब सुनते हैं सुनने के तुरंत बाद, और बीच बीच में टाइम मिलता है तो करो, और सभी उत्तर राइट है, परंतु दो उत्तर सबसे अधिक राइट है, वो है अमृत वेले के तुरंत बाद और दूसरा है रात में सोने से पहले। अमृत वेले के तुरंत बाद बिस्तर किस किस को आकर्षित करता है, अमृत वेले के बाद जो जो सोते हैं, तुरंत अमृत वेला हो गया और सीधा खटिया की तरफ अपने आप कदम बढ़ने लगते हैं, वो जो जो है वो हाथ ऊपर करो। वो कभी कभी नहीं, कभी कभी या हमेशा, जो भी है, अगर सोते हैं तो हाथ खड़ा करना है। अमृत वेला हुआ और उसके बाद में गीत सुनाई देता है, आ जाओ मेरे लाडलो, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। बिस्तर से आवाज आती है, आ जाओ सब छोड़ो, मैं पुकार रहा हूँ तुम्हें, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। पुकारता है बिस्तर, नहीं ऐसे कैसे नहीं नींद तो बड़ी अच्छी आती है, अमृत वेला पावरफुल करो, उसके बाद में अच्छी एक घंटा नींद, आधा घंटा भी नींद कर लो तो फ्रेश लगता है। शक्तिशाली योग किया, शक्तिशाली तपस्या की और उसके बाद में सो जाना, अर्थात की कमाई चट कर देना। वो समय है चिंतन का, वो समय है अध्ययन का, वो समय है ज्ञान की चर्चा करने का, वो समय है एकांत का, वो समय है मौन का। अध्ययन का, स्टडी का, वो समय हमारा नींद में ना चला जाए, क्योंकि ऐसा समय फिर नहीं आएगा। अमृत वेला हो गया, अमृत वेला शक्तिशाली योग किया, परंतु उसके बाद सो गए। भगवान से, किसी दोस्त से हम मिले, इतनी खुशी हुई उससे मिलके, इतनी खुशी हुई, और फिर जाके सो गए, नींद आती है। इसका मतलब शायद दोस्त से जो प्यार था वो झूठा था। रात को सोने से पहले जिस संकल्प के साथ हम सोएंगे, रात को सोने का अंतिम संकल्प ही सुबह का पहला संकल्प बन जाता है। टीवी देखते देखते सो रहे, मोबाइल मैसेजेस पढ़ते पढ़ते या भेजते भेजते या ईमेल या सोशल मीडिया उस पे लगे हुए हैं, सोने से आधा घंटा पहले डिजिटल वैराग आ जाना चाहिए थोड़ा देर। डिजिटल वैराग पता है ना, एक डिजिटल माया भी है तो डिजिटल वैराग भी है, डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स शायद आपको पता नहीं होगा, तो कम से कम आधा घंटा पहले अलग और ऐसी अवस्था में सोना है। तीसरा प्रश्न है, कहां करें चिंतन? भाइयों की तरफ से कहां बैठकर करें? छत के ऊपर और मॉर्निंग वॉक करते करते और पीछे से 10 उत्तर बताओ कम से कम, कहां कहां चिंतन करें? माताएं, माताएं कहेंगी मेरा हमारा काम नहीं है चिंतन करना, बहन जी करेंगी, हम तो मुरली लिखेंगी बस, सेंटर पे जाना मुरली लिखना, मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, प्रश्न उत्तर, उत्तर हो गया, डायरी बंद बाजू में, तब तक बीच में थोड़ी सी नींद और फिर मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जैसा हुआ कि नींद से जागरण और जागरण के बाद में धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट 1 पॉइंट 2 फिर उसके बाद में वरदान, वरदान का विश्लेषण का एक हाथ पॉइंट स्लोगन, आज का काम पूरा हुआ, डायरी बंद, आज का काम पूरा हुआ, हाँ, काम पूरा हुआ, प्रेजेंटी लग गई, बहन जी ने देख लिया, बाकी लोगों ने देख लिया, आज का काम पूरा हुआ, चलो घर। कोई कोई माता है टेबल के नीचे डायरी छोड़कर जाती है सेंटर पर, सीधा कल सुबह ही देखेगी, फिर ऐसी भी माता है, कोई कोई भाई भी भाई भी है, सब है, इससे उन्नति नहीं होगी, ज्ञान धारण नहीं होगा। ज्ञान धारण के लिए चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, श्रेष्ठ चिंतन चाहिए। इसके लिए चाहे बाबा के कमरे में करो, चाहे अपने घर में करो, चाहे छत में करो, प्रकृति के सानिध्य में करो, कहीं पर भी करो, पर करो, और सबसे उत्तम जगह है प्रकृति, छत, खुला आसमान, खेत, जहां पर एकांत है, जहां एकांत है, जहां कोई नहीं है, जहां मनुष्य की पदचाप भी नहीं है, किसी का आवाज नहीं है, केवल प्रकृति है, केवल झरनों का कलकल निनाद है, केवल पंछियों का गायन है, केवल हवाएं हैं, केवल प्रकृति और प्रकृति का सौंदर्य है, जहां पर खुला आसमान है, पर्वत है, झील, झरने, तालाब है, खेत है, और मौन है और एकांत है और शांति है, निस्तब्ध शांतता, निरवता, पिन ड्रॉप साइलेंस, निश्शब्दता, निस्तब्धता, शब्द नहीं मौन है। मच्छरों ने इस संसार में योगियों को बहुत तंग किया है द्वापर से ही, लगन में मगन हो जाए तो मच्छर काटे तो भी पता नहीं चलता। हमें याद है हम एक सत्संग में थे, वो महाराज ऐसे बैठे थे ऐसे, और हमको लगा उनका मोजा काला है। बहुत समय सत्संग चालू था, डेढ़ घंटा, हमको लगा शायद वो मोजा काला है, पर बाद में जब उठे वो सारे मक्खियां थे और मच्छर थे, परंतु प्रवचन चालू था। प्रकृति वहां जाते ही दिमाग खुल जाता है। कमरे में बैठकर कितना चिंतन करोगे, कितना पढ़ोगे, बाहर जाओ और मन खुलता है। लॉन्ग वॉक, कोई क्लास सुनो, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, चौथा प्रश्न है। मधुबन में हम लोगों का जो ग्रुप है, ऐसी 52 मेथड्स बनाई है मुरली चर्निंग की, और हर फ्राइडे सैटरडे संडे, तीन दिन, संडे की जो मुरली होती है इसके आधार से पहले ही सारा रिवीजन सब लोग कर लेते हैं। जैसे इसकी कुछ मेथड्स आपको बताएंगे और फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये 52 मेथड्स है, 52 में और तीन चार ऐड हो गई है, अभी वो इसमें नहीं डाली है। किस विधि से मुरली का चिंतन करना है, सबसे पहली एक इसमें विधि है आंसर चर्निंग मेथड, अर्थात उत्तर मंथन विधि। एक मुरली चाहिए साकाराज की, उत्तर मंथन विधि, अर्थात जैसे ये मुरली है, इस मुरली का प्रश्न पढ़ लेना, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे, इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है। उत्तर नहीं देखना, उत्तर नहीं देखना, प्रश्न पढ़ लेना, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे, अब इसके ऊपर सोचने लगना। कम से कम 10 उत्तर हर दिन लिखने हैं। इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है, गीता क्या है, किसने लिखी, क्या गायन है, संसार गीता के बारे में क्या कहता है, भगवान गीता के बारे में क्या कहता है, चिंतन करना। उत्तर प्रश्न पढ़ लेना, उत्तर नहीं पढ़ना, उत्तर खुद निकालना, वो भी मुरली से नहीं, स्वयं के चिंतन से। ये विधि है, इसको हमने कहा है आंसर चर्निंग मेथड। दूसरा है आस्किंग अदर्स मेथड। आस्किंग अदर्स मतलब मुरली हमने अगर पढ़ ली है सारे दिन में, तो हम दूसरों को पूछे, क्या तुमको पता है आज बाबा ने ऐसा कहा वरदान में, देखो आज बाबा ने ऐसा कहा, और दूसरों को पूछे तुमको पता है आज का स्लोगन क्या था, तुमको पता है आज बाबा ने सच्चा सेवाधारी किसे कहा। एक दूसरे से ज्ञान की चर्चा करना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। कौन कौन करता है ज्ञान की चर्चा, लिखना पढ़ना नहीं, चर्चा, चर्चा अर्थात चार लोग मिलके बैठे और रोज उसके ऊपर चिंतन करे, मनन करे, चर्चा करे, आज बाबा ने ये कहा उसका क्या अर्थ है, आज बाबा ने कहा ज्ञान कस्तूरी है, कस्तूरी क्या होती है, कस्तूरी कहाँ मिलती है, कस्तूरी का क्या क्या नाम है, ज्ञान को वर्षा कहा, अगर ज्ञान वर्षा है तो इस वर्षा में क्या होता है, कब ये वर्षा होती है, इस वर्षा का पानी कौन सा है, बूंदे कौन सी है, बादल कौन से है, आकाश कौन सा है, ये सारा चिंतन है। वारे में ब्राह्मण आत्मा किताब है, सुना है, यज्ञ की किताब है वारे में ब्राह्मण आत्मा, उसमें ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य है, 10 में से ये 10वां कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, डिस्कशन। जब तक ये ज्ञान, इस मुरली को डिस्कस नहीं करोगे समझ में नहीं आने वाली है ये, इतना आसान नहीं समझना इसको। एक एक शब्द का अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, इस वाक्य के पीछे भाव क्या है, केवल इतना ही पढ़ लिया, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंस गए, कौन सी दुबन, कौन सा दलदल है संसार में, लिखना चालू करो, जो लिख सके है वो लिखे, संसार में दलदल क्या क्या है, कितने प्रकार के दलदल है, 10 दलदल कौन कौन से है, चिंतन लिखो। मुरली तो अभी आगे पढ़ी नहीं, बस इतना ही, एक वाक्य आया और हम रुक गए, क्योंकि हमें शब्दार्थ को समझना है, भावार्थ को समझना है, गुणार्थ को समझना है, रहस्य को समझना है, उसे निकालने की मेहनत करो। कौन सी मेहनत करो, क्यों मेहनत करो, कहां मेहनत करो, कब मेहनत करो, प्रश्न आने चाहिए। एक होता है संचय बुद्धि हो जाना, वो अलग। अभी हम जो कर रहे हैं वो है ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, वो अति आवश्यक है। बाबा के महावाक्य है, साकार महावाक्य, जो गाय उगारती नहीं है, उगारना पता है ना, जो गाय उगारती नहीं है वो बीमार है, जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। तो यहां बीमार कौन कौन है? नहीं करते, तो ये दूसरी मेथड है। तीसरी मेथड है ऑडियो मेथड। ये बहुत सारी मेथड से हम कुछ आपको बता रहे हैं। ऑडियो मतलब मुरली आजकल मोबाइल में आ जाती है। एक होता है अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना और अपनी आवाज में सुनना, एक। दूसरा होता है पहले से जो रिकॉर्डेड है उसको कान में लगा के लॉन्ग वॉक पे चले जाना और पूरी मुरली पूरी करना, सुनना कान में। एक होता है क्लास में बैठ के सुनना, वो हम बात नहीं कर रहे, ऑडियो अलग से प्राइवेट सुनना उसको, वो एक मेथड है। तीसरी मेथड है कॉन्ट्रास्ट मेथड। कॉन्ट्रास्ट अर्थात परस्पर तुलना, इस मुरली में कितने कॉन्ट्रास्ट बाबा ने दिए है। अर्थात जैसे वो ब्राह्मण क्या करते हो और तुम ब्राह्मण क्या करते हो, वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली, अब इन दोनों में क्या अंतर है, कॉन्ट्रास्ट। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग, ये है भक्ति मार्ग की सामग्री, ज्ञान मार्ग की कोई सामग्री नहीं है, ये और ये कॉन्ट्रास्ट। जैसे उस दुनिया में वो होता है तो बाबा कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इस पूरी मुरली में 10 कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट आए हैं उसकी लिस्ट निकालना। अगला है एग्जाम्पल मेथड। इस मुरली में बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल मीरा का दिया है, नारद का दिया है, कीचक का दिया है, सुदामा का दिया है, ऐसे चार एग्जाम्पल, पांच एग्जाम्पल इस मुरली से, खाली पांच एग्जाम्पल। अभी पांच एग्जाम्पल में पहला है सुदामा। सुदामा के बारे में क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसका ज्ञान से क्या संबंध है? महाभारत के किसी एक पात्र को याद किया, द्रौपदी को याद किया, क्यों याद किया, चिंतन करना है उसके बारे में, यह है एग्जाम्पल मेथड। अगली है गीत मेथड। गीत अर्थात इस मुरली के ऊपर गीत लिखना, एक ऐसा गीत जो लिख सकते हैं, ऐसा गीत जिसमें मुरली की सारी पॉइंट्स आ जाए। पोयम मेथड, ऐसा एक कविता लिखना जिसमें मुरली की सारी पॉइंट्स आ जाए। होमवर्क मेथड, इस मुरली से बाबा ने क्या क्या काम दिए हैं। होमवर्क क्या है, मुरली तो पढ़ ली, होमवर्क करना क्या है, ऐसे बहुत सारी, ये सारी अलग अलग। सेल्फ चेकिंग मेथड, इस मुरली से सेल्फ चेकिंग की कौन सी पॉइंट है, जैसे अपने आप को चेक करो, क्या मैं बाप की याद में हूं, क्या मैंने आज क्रोध किया, क्या मेरी दृष्टि वृत्ति पवित्र थी, सेल्फ चेकिंग मेथड। एक है ड्राइंग मेथड, इस मुरली के ऊपर एक पिक्चर बना दो, पिक्चर एक पूरा ड्राइंग, एक अलग अलग जिसमें पूरी मुरली आ जाए, पूरी मुरली उस ड्राइंग में आ जाए, ऐसा क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नई कुछ तो लाना है उसमें। तो ऐसी ये बहुत सारी विधियां है। अभी हम एक छोटा सा गेम करेंगे, ये चीजें आपको आपके सामने दिखाई दे रही है, एक बार भाइयों की तरफ से, एक बार बहनों की तरफ से, जो जो चीजें सामने हैं उनका ज्ञान में क्या अर्थ है और ज्ञान से उसको कैसे जोड़ेंगे। पहले भाइयों से चालू करते हैं, हम एक एक चीज अपने हाथ में उठाएंगे। एक माइक इधर दे दीजिए, सबसे पहले भाइयों की तरफ से, ये क्या है और इसका ज्ञान में क्या क्या अर्थ हो सकता है, सोचना चालू करो और तुरंत आ जाओ इधर, बाकी सब आपको मदद करेंगे। इसका ज्ञान में क्या क्या अर्थ हो सकता है, कोई भी आ जाए, चलो, ये ज्ञान में इसका क्या अर्थ है।
ओम शांति। बाबा ने जो दिखाया ये, इसको शंख कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम इसको फूंकते हैं, हम दूसरों के लिए जो भी बोल बोले उसमें भगवान की याद समाई हुई और दूसरों का कल्याण भी होना चाहिए। और ज्ञान में इसका मतलब बाबा कहते हैं कि कम बोलो और मीठा बोलो और धीरे बोलो, ज्ञान शंख बजाना है, परमात्मा की पहचान सबको सुनानी है।
साइलेंस और साइलेंस दोनों का ये प्रतीक है। और भाई जी आप बताएंगे, कुछ बता रहे थे, हाँ आइए आइए। और
बाबा तो चार सब्जेक्ट बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सभा। सभा में यह है कि बाबा जो सिखा रहे हैं, बाबा जो ज्ञान, हमारे पड़ोसी को ज्ञान नहीं मिला है, हमारे घर में हम हमारा माँ बाप को नहीं बताते, हमारा अपने सगे भाई को भी नहीं बताते, हाँ हमारा घर में हम अकेला चलते हैं बस। बाबा का जो ज्ञान है, ये ज्ञान सबको सुना, ये सबसे बड़ा संकट है।
बहनों की तरफ से इसका ज्ञान में क्या क्या अर्थ है, क्या क्या अर्थ हो सकता है, फटाफट आ जाए कोई भी बहन और बताना चालू करे, बाकी सब लोग मदद करेंगे। यह है ज्ञान का चिंतन। बैठ जाएंगे या इधर आ जाइए।
अगरबत्ती भक्तियों में खुशबू के लिए फैलाए, हमें खुद अगरबत्ती बनकर ज्ञान अपना ज्ञान जलाना है, मतलब खुद जल कर लोगों की सेवा करनी है। ज्ञान को किस तरह से फैलाना है, जैसे अगरबत्ती अपनी खुशबू को वहीं रहकर खुद जलते हुए फैलाते, मतलब खुद हम अपने आप को तपाएंगे, योग अग्नि सब अपनी तप के द्वारा लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है, रूहानी खुशबू फैलाएंगे। अगर बोलिए एक बार
एक दुर्गंध युक्त कमरे को जैसे एक सिंगल अगरबत्ती खुशबू फैला देती है और संपूर्ण वातावरण चेंज हो जाता है, उस तरह हम एक एक आत्माएं संसार में अपनी ज्ञान खुशबू और रूहानी खुशबू फैलाते जाएं और बाबा का ज्ञान देते चलें।
अगरबत्ती क्या क्या करती है इसके ऊपर सभी आज चिंतन करेंगे, ठीक है। हम अभी समय कम है इसके लिए विस्तार नहीं करेंगे। भाइयों की तरफ से ये क्या है और इसका ज्ञान में क्या अर्थ है, जल्दी आ जाओ। कोई चाबी के विषय में आज तक सारी अव्यक्त मुरलियां साकार मुरलियों में बाबा ने चाबी शब्द से संबंधित कौन कौन सी बातें कही है, फटाफट आ जाओ। आ जाइए कोई भी आ जाओ, आप ही आ जाओ, कोई भी, जल्दी। चाबी का क्या क्या अर्थ है ज्ञान में?
ओम शांति। हम मनसा थे तो कोई भी चाबी नहीं मिला, एक चाबी गणेश का चाबी, आत्मा का चाबी परमात्मा है, ये चाबी मिल गया तो सारी गणेश का कौन कौन सामान रख गया वो हमको मिल गया, वो मेरा बात क्या कहना है। ज्ञान का खजाना चाबी है, तो ज्ञान का खजाना का चाबी।
तो डायमंड की के बारे में जो बाबा कहता है कि वो जैसे भाई ने बोले कि जब भी कोई विघ्न आवे या कोई भी परिस्थिति आवे तो एक डायमंड की याद रखना, वो है मेरा बाबा। और फिर बाबा जैसे कहता है कि माया ने तुम्हारे बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है, उसके साथ भी आई थिंक ये चाबी बुद्धि का ताला खोल देता है। और बाबा बुद्धि का ताला खुलता है और फिर दूसरों को भी हम बोलते हैं कि जैसे बाबा कि इस आत्मा की बुद्धि ऐसी हो गई है, इस आत्मा परिस्थिति में आ गई है, इसकी भी ताला खोल दो, तो ये भी एक चाबी है।
मेहनत इतनी बड़ी चाबी है जो बंद भाग्य को भी खोल देता है।
घड़ी के विषय में बाबा ने क्या क्या कहा?
अभी जो चार युग में अभी लास्ट कलयुग और तो चला गया और कलयुग और सतयुग के बीच में जो टिक 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 करके ड्रामा का जो घड़ी का सुई चल रहा है उसी के बारे में बाबा बताते हैं मूल्य में। अभी समय का मूल्य बहुत वैल्यूबल है। बस बाबा तो एक दो से, वो सेकंड की बात रह गई अभी। और समय तो बहुत स्पीड से वो भी घड़ी की सुई की तरह चलता ही रहता है। ड्रामा का चक्र भी सुई की तरह चलता रहता है। अभी समय बहुत कम है। ट्रैफिक कंट्रोल का भी वैल्यूबल है हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में। हाँ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। एक घंटे में एक मिनट बाबा को याद करना है, उसी का महत्व ज्यादा जाता है। फिर उसी टाइम के हिसाब से जैसे अमृत बेला, फिर नुमान शाम का योग, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, मूल्य क्लास के पहले फिर मेडिटेशन, और रात को सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करके आधा घंटा योग, ये सब घड़ी का इशारा देता है। समय एक पंछी भी है बोलते बाबा, वो उड़ता ही रहता है। घड़ी आठ घंटे, हाँ घंटे के हिसाब से, मतलब 24 घंटे को तीन हिस्सा में जो बाबा ने बता दिया है, 8 घंटा नौकरी आदि करो, 8 घंटा घर के काम धाम करो, और फिर 8 घंटे बाबा की सेवा करनी है।
समय की लास्ट सूचना है। एक गांवली गांव से एक बच्ची फोटो लेने के लिए गया था। बहुत सुंदर फोटो लेना था उनको, बहुत अच्छा पेंटिंग हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वो जब कैमरा वाला बोलता है रेडी, तब वो क्या करता है, मक्खी मक्खी ऐसे हो जाता है। कब क्या करता है, फिर से वो मक्खी आ जाता है, फिर ऐसा ऐसा कर देता है, और इस समय फोटो खींच लेता है, तो क्या होता है, उसका फोटो खराब हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपना अंतिम समय अंतमति सोगति ऐसा करो जैसे कि अपना फोटो खराब हो न जाए। तो अंतिम घंटे घड़ी, अंतिम घड़ी के लिए तैयार हो जाओ।
और कौन सी घड़ी बजने वाली, घंटी बजने वाली? विनाश की घंटी,
अभी विनाश की घंटी बजने वाली है, इससे पहले अब रेडी हो जाओ।
अभी जैसे स्कूल की जब पढ़ाई खत्म होती है, हाँ जब अभी खत्म होने वाला है, तो अभी घंटी बज रहा है। तो और भी बाबा ने बताया कि जो मंदिर में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान को हम जगाते हैं, लेकिन बाबा अगर हमको जगाते हैं तो अभी और अभी समय के भी माने ड्रामा के लास्ट समय में लास्ट भी अभी घंटी बजने वाला है, तो अभी समय के बहुत कम है।
भक्त लोग पुकार रहे, वो पुकार की निशानी है बहनों की तरफ से, ये क्या है और इसका ज्ञान में क्या महत्व है? जल्दी पीछे से, आगे से नहीं, अब पीछे से कौन आएगा? ये क्या है और इसका ज्ञान में क्या महत्व हो सकता है? कैंडल करती क्या है? चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हिंदी नहीं आता है तो अपनी भाषा में बताओ। नहीं इधर इधर इधर, हाथ में माइक आना चाहिए, फिर थोड़ी पावर आएगी। आ जाओ आ जाओ, और उसके बाद में कठिन वाला बहनों को देंगे।
ओम शांति, ये कैंडल है। तो बाबा ने इसके बारे में बोले कि ये आत्मा रूपी दीपक को जलाना जगाना है। ये खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। वो अंधकार, ये अंधकार को दूर करता है। वो भी लाइट भी ये रास्ता दिखाते हैं।
अभी बहनों की तरफ से इसके विषय में नहीं, एक अभी स्पेशल बहनों की तरफ से, टीचर्स बहनों की तरफ से इसके विषय में बताया ना, इसके विषय में बाबा ने क्या कहा है? जल्दी जल्दी, वो भारत में कहते हैं ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैसे कम हो जाते हैं घर में, खाली कैची ऐसी ऐसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसके विषय में बाबा ने, इधर से, इसके विषय में, कैची के विषय में ज्ञान में क्या अर्थ हो सकता है कैची का?
ओम शांति। ये बुरी दृष्टि बुरी नजर से ये कट करना है, अपना जो शुद्ध संकल्प सबके प्रति रखना, और बुरी जो कर्म बुरी जो मनसा में भी आता है भावना, ये सबको कट करना। मनसा वाचा कर्म, पर चिंतन पर दर्शन पर मत, माया का गला काटना है। उद्घाटन भी करते हैं तो सतयुग का भी उद्घाटन हम करेंगे। ज्ञान योग नहीं, ये हिम्मत
इसको थोड़ा इन्होंने पैक कर दिया है, पता है सबको पता है। नहीं आपका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो चार्जर 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 का क्या करना है।
जन्म जन्मांतर इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाते, हमारा आत्मा का जो पावर था जो शक्तियां था वो खत्म हो गई है, तो बाबा का ज्ञान के हिसाब से ये जो चार्जर है, हम इस चार्जर से हम बाबा के साथ जोड़ लगाएं, पावर हाउस से जोड़ लगाकर हमारे आत्मा को चार्ज करना है, बैटरी को चार्ज करना है, कनेक्शन अच्छा हो तो चार्ज रहेगा। हमारा हम स्मृति का स्विच भी ऑन होना चाहिए, स्मृति का स्विच ऑन हो, और हमारा जो प्लग भी हो ना उसमें कार्बन भी नहीं होना चाहिए, कार्बन हो तो इतना अच्छा कनेक्शन नहीं जोड़ सकेगा, इसलिए पूरा साफ सुथरा चार्जर होना चाहिए, जंक 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 नहीं होना चाहिए। थैंक
यू। गुलदस्ता या फूल के विषय में बाबा ने अब तक कहे हुए सारी बातें,
ये दिव्य गुणों की गुलदस्ता है, धैर्यता नम्रता सहनशीलता हर्षित मुखता निर्भयता, ये सब गुण है, पवित्रता, तो ये सभी गुण अगर है हमारे पास तो हम दिव्य गुणों की गुलदस्ता बन सकते हैं, और बाबा भी बोलते हैं कि गुलदस्ता मेरे को चाहिए, अलग अलग रंग अलग अलग खुशबू है, बहुत अच्छा लगता है, वैरायटी कलर और एकता है, जैसे बलांगीर एकता है, एक गुलदस्ता बहुत बढ़िया गुलदस्ता है। और एक बात मैं बता रही हूँ, उस समय मैं बता नहीं पाई, हमारे जो बहन है ना तरभा तुसरा बेलपड़ा पाटनागढ़ गोंडा मांझी जो आसपास है बहनें जो समर्पित हुए हैं, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, और बहुत हमारे आपस में ना बहुत प्यार है बहन, और बलांगीर की भाई बहनें भी कभी नाराज भी नहीं होते हैं, और सब बहुत बढ़िया हैं, और इनके सहयोग से और इनके सबके सहयोग से बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य भी हो जाता है। ओम शांति।
तो ये विधि है चिंतन की, जो भी वस्तुएं संसार में दिखे, झाड़ दिखे तो झाड़ के विषय में ज्ञान में क्या अर्थ है, खिलौना दिखे तो खिलौना का ज्ञान में क्या अर्थ है, दरवाजा दिखे दरवाजे का ज्ञान में क्या अर्थ है, हर चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है इस संसार में इस प्रकृति में इस जहान में उसका ज्ञान में क्या अर्थ है, ये विधि है निरंतर चिंतन में रहने की और स्वयं को ज्ञान से जुड़े रखने के। बाबा ने एक मुरली में कहा है, चाहे मुझे याद करो या ज्ञान को याद करो, एक ही है, और एक मुरली में तो यहां तक कहा है कि ज्ञान को याद करने से मेरे को याद करने से ज्यादा फायदे हैं, अगर तुम ज्ञान को याद करते हो और मुझे नहीं याद करते तो तुमको फिर भी ज्यादा फायदे हैं, इसके लिए ज्ञान को समझने के लिए उसका दृष्टिकोण बदल दो। सारी जो मटेरियल चीजें उसको स्पिरिचुअलाइज करना, पवित्रीकरण, सोच को चेंज करना, ठीक है। ओम शांति। अभी बहन जी कुछ बताएंगे आपको इंस्ट्रक्शंस।
अभी आप लोग ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे, और ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के बाद कोई भी घर में नहीं जाना है।